Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Adhyan or Brahma Gyan ya Brahma Chaitanya. Brahma Gyan kehne se aapko lagega kuch Brahma Gyan arjit karna hai. जानना है, इसलिए उसको कह दिया ब्रह्म चैतन्य। तो ये ब्रह्म चैतन्य है, तो ये जो ये विभाग हम लोगों ने कर लिए, तो अब जब इसको ये कहते हैं कि आनंद आदि, इनको जब कहते हैं कि आत्म धर्म है, तो वह भी औपाधिक रीति से कहते हैं, औपाधिक रीति से ही वहां कहते हैं, और वहां पर यह इस प्रकार से विचार करता है, विचार चलता है। तो जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसे तो कहेंगे ज्ञान, चैतन्य, प्रकाश। और तो और जो ना स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है, उसे कहेंगे अंधकार, जड़, अज्ञान, उसको इस प्रकार से संज्ञा दी जाती है। लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए यहां कि जो अज्ञान होता है, अज्ञान, अंधकार, जड़, उसकी सिद्धि भी प्रकाश से अर्थात ज्ञान से, चैतन्य से होती है। इसलिए जहां अज्ञान होता है वहां भी ज्ञान तो होता ही होता है, वहां भी ज्ञान होता ही है। परां पश्यति नांतरात्मन, बाहर को देखते हैं अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। तो इसमें परां पश्यति नांतरात्मन, तो अंतरात्मा जब शब्द बोलते हैं तो अंतः का अर्थ होता है सूक्ष्म। अंतरात्मा आप लोग हमेशा बोलते हैं, अंतर्यामी, अंतरात्मा। तो अंतः शब्द से वहां यह ज्ञात होता है कि यह आत्मा सूक्ष्म है। आप कितना अपनी बुद्धि को, वेदांतों की यही महिमा है, इसके सत्संग की यही महिमा है कि यह आपकी बुद्धि को सूक्ष्म करता चला जाता है, सूक्ष्म। तो वेदांत भी सुनाए और सूक्ष्मता की ओर भी नहीं ले जाए, तो थोड़ा सा उसमें संतोष नहीं होता। हम अपनी बात बता रहे हैं कि संतोष नहीं होता। कुछ अच्छी एक मार्के की बात सुना दी तब तो लगता है कुछ अच्छा सुनाया, कथा कहानी सुना दी तो फिर कुछ संतोष नहीं होता। पहले पहले हम दिल्ली में सत्संग करना प्रारंभ किए तो वहां जो श्रोता आते थे, बड़ी पढ़ी लिखी माताएं, तो उन लोगों ने कहा कि आप सत्संग तो अच्छा सुनाते हैं लेकिन कुछ, ये भी एक दृष्टांत ही है भला जो अभी सुना रहे, तो वो बोले कि आप कुछ दृष्टांत दे दिया कीजिए तो हम लोगों को सरल हो जाए, क्योंकि महाराज जी सुनाते थे तो इतने मधुर दृष्टांत देते थे। तो आप, और जब महाराज जी के पास ही रहकर हमने चिंतन किया तो गंभीर बात को पकड़ना और उसी को सोचना, ऐसी एक शैली बन गई थी, और दृष्टांतों को छोड़ देते थे। तो उसी वही दृष्टि बनी हुई थी, तो जब पहले प्रारंभ किए सत्संग सुनाना तो उसी तरह से सुनाते थे। तो उन लोगों ने कहा कुछ बीच में दृष्टांत दे दिया कीजिए तो हम लोगों को थोड़ा हल्का हो जाए। तब हमने अपनी दृष्टि दृष्टांतों पर दौड़ाई और दृष्टांत इकट्ठा करके जाते थे, जब प्रवचन करने जाना है तो कुछ दृष्टांत इकट्ठे करके जाना है, क्योंकि लोग सो जाएंगे, उन्हें लगेगा बड़ा भारी हो गया। तो दृष्टांतों पर दौड़ाई और दृष्टांत बोलने लगे। अब कुछ वर्ष, 6-8 वर्ष जब उन लोगों ने सुन लिया तो वो उन्हीं लोगों ने आके हमसे कंप्लेन किया, शिकायत की। उन्होंने कहा भी इतनी गंभीर बात चल रही होती है और आप बीच में दृष्टांत काहे को ला देते, तुम ही लोगों ने तो कहा था। तो बोले इतनी गंभीर बात और हमारा पूरा चिंतन टूट जाता है, अब उसी सूक्ष्मता में रहिए, तो हम घबरा जाते हैं, फिर उसमें से एकदम बाहर आके दृष्टांत में पहुंच जाते हैं तो कुछ गड़बड़ी सी हो जाती है। तो हमने कहा कि हमारी क्या गलती भाई, तुम ही लोगों ने कहा था, और बहुत खुशी की बात है कि अब तुम लोग इतना इस प्रकार से सोचने लगे हो, तो हम दृष्टांत की ओर ज्यादा हमारी स्वाभाविक आ जाता है तो सुना देते हैं, और स्वाभाविक नहीं आए तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंतरात्मा, अंतः अर्थात सूक्ष्म, तो अंतः की ओर चलना है, इसलिए आपको बोला स्फुरणात्मक जितना है वह वासना जन्य है, संस्कार जन्य है। ये सारी सृष्टि जो आपको दिख रही है यह संस्कार जन्य है, पूर्व पूर्व के संस्कारों के कारण यह आपको यह प्रतीति हो रही है। अब आपकी आपका पुरुषार्थ यह है कि आप वेदांत विचार करके इसे हल्का कर दें, इसे गौण कर दें, इसे मिथ्या कर दें, तो आप बाध करने में समर्थ होंगे। मिथ्या तो निश्चय का ही नाम बाध है, और निश्चय बुद्धि में होगा, और कैसे होगा, कहा सत्संग से होगा। तो सूक्ष्म है, अंतः है, और आत्मा है। आत्मा है अर्थात चैतन्य है, अर्थात वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और जब स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो उसको जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बाहर चमक रहा है और आप एक मोमबत्ती लेकर नहीं दिखाते हैं कि यह देखो ये सूर्य चमक रहा है, आप नहीं दिखाते हैं, आप सीधे दिखा देते हैं वो देखो सूर्य चमक रहा है, बच्चे को परिचय करा देते हैं। जब सूर्य शब्द बोला जाएगा तो वह समझ जाएगा कि आकाश में स्वयं प्रकाश जो चमकता हुआ गोला है वह, उसी प्रकार से यह आत्मदेव ये स्वयं प्रकाश है, स्वयं चमकते हैं, इसलिए उनको अंतरात्मा कहते हैं। तो तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन। तो हम लोग जो विचार करते हैं थोड़ा सा भाष्य के अनुसार ही करते हैं। तो अब जब ये जितनी संपूर्ण सृष्टि दिखती है, जब सूर्य के दृष्टांत को हम समझते हैं, तो प्रकाशक से प्रकाश्य की सत्ता भिन्न नहीं होती, अर्थात जो दिखता है वह देखने वाले से भिन्न नहीं होता है। आप हैं स्वयं प्रकाश आत्मा, आप हैं प्रकाशक, तो आप जो प्रकाशक हैं आपसे प्रकाश्य वस्तु की सत्ता सिद्ध भिन्न नहीं होती है। तो आपसे जो प्रतीत होता है, मुझसे जो प्रतीति है प्रतीत होता है, वह प्रतीति मुझसे भिन्न नहीं है। कल ये श्लोक लिया था हम लोगों ने, यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयानि है, तो वह मुझसे भिन्न नहीं है क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप हूँ। तो जितना भी देशात्मक दिखता है, कालात्मक दिखता है, वस्त्वात्मक दिखता है, जात्यात्मक दिखता है, कार्य कारणात्मक दिखता है, और भी आप जहां तक अपनी वृत्ति को ले जा सकते हैं ले जाइए, ब्रह्मांडात्मक दिखता है, कोटि कोटि, क्योंकि जब देश की कल्पना आएगी तो उस आपकी देश की कल्पना को हमारे शास्त्रों ने बड़ी भारी उड़ान दे दी, उड़ो जहां तक उड़ सकते हो। किसको उड़ाया? बुद्धि को। तो ब्रह्मांड दिए और उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड दिए देश की कल्पना में, और काल की कल्पना में तो महाराज क्या बताएं, आप जानते हैं चार युग, और चार युग के बाद उनके ये चार युगों की स्थिति अन्य 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 लोकों में क्या है वह करके दिखाई गई, बड़ा भारी गणित लगाया गया। और जब कार्य कारण लिया गया तो एक ब्रह्मांड के नियंता एक ब्रह्मा जी, और कोटि एक ब्रह्मांड के और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नियंता उनके अधिष्ठान उनको बनाने वाले कौन, तो कहा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा बड़े हैं भाई, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं, एक ब्रह्मांड को बनाते बिगाड़ते रहते हैं। आपको क्या सुना है? एक हम लोग रामघाट में थे, शिवड़िया बाबा जी महाराज की तपस्थली, वृंदावन छोड़ के हम वहीं गए थे, वहीं साधना करते थे गंगा तट पर। श्री महाराज जी कहे थे तुम हमें गंगा तट ले चलना, तो वहीं रहे थे। तो वहां जब साधना कर रहे थे तो महात्मा पुराना आश्रम, विरक्त महात्माओं का आश्रम, उसके पहले वहां माता साधुओं को नहीं रहने दिया जाता था, हमें नियम मालूम नहीं था, हम पहुंच गए। फिर ऐसी बाबा की इच्छा हुई कि रहने दिया गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि शाम को हम थोड़ा सत्संग करने लगे महात्माओं के बीच में बैठ, तो एक महात्मा थे उनके उपासना के संस्कार बुजुर्ग महात्मा, उन्होंने क्या बोलते हैं वो आतुर संन्यास, अर्थात मरने लगते हैं तब संन्यास दे दिया जाता है। ब्राह्मण शरीर है यदि तो उसे बिना संन्यास के नहीं मरना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। जो जितना जिसको जितना बड़ा भाई मानते हैं उसके ऊपर उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है। तो आतुर संन्यास लिए हुए थे, लेकिन संस्कार तो उनके उपासना के थे, तो रोज वेदांत सुनते, अंदर से बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते। तो वो हमसे रोज कहते कि माता जी एक बात सुनो हमारी, कि अगर ऐसे सबको मोक्ष की बात बता दोगे कि सब आत्मा मुक्त ही है तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। रोज वो प्रश्न पूछते थे, ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो अब बुजुर्ग महात्मा तो हम हंस देते थे। फिर एक दिन हमने कहा स्वामी जी आपको सृष्टि की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो आपने बनाई नहीं, सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। आप तो अपने भगवान का नाम लीजिए और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे तो रामचरितमानस ऐसे लोगों को, सबको बहुत ज्यादा ग्रामीण वर्ग को बहुत ज्यादा उनके लिए कल्याणकारी। तो जब भगवान के भजन को ही सत्य बता रहे हैं तो आप सृष्टि का विचार क्यों करते हैं, तब उनको संतोष हुआ। हाँ ये बात ठीक है, आप अपनी भगवान की उपासना कीजिए, और भगवान के स्वरूप का निरूपण होता है तो थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए। तो सृष्टि के को लेकर भी परेशानी होती है, सृष्टि कैसे चलेगी, जैसे सृष्टि आपने ही बनाई हो। यही प्रेमपुरी आश्रम में एक बार पूछा गया था, या हो सकता है वृंदावन में पूछा गया हो, कि महाराज जी से पूछा गया कि सब सन्यासी हो जाएंगे तो सन्यासी भी तो रोटी मांगता है और रोटी गृहस्थ बना के खिलाता है, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है, वो भिक्षा देता है। तो आप यह बताइए कि सब सन्यासी हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा, रोटी कौन बनाएगा, रोटी तीन आश्रम को तो रोटी गृहस्थ ही खिलाता है, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को। तो इस प्रश्न का महाराज जी ने उत्तर दिया था, बहुत आनंद में उत्तर दिया था। तो महाराज जी ने बहुत आनंद में भर के कहा ओहो क्या बात है, सबको सन्यासी हो जाने तो दो, फिर तुम देखो क्या होता है। नदियों में दूध बहेगा, पेड़ों में मालपुए लगेंगे, तोड़ तोड़ कर खा लेना, भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि सभी ईश्वर की ओर चल पड़े हैं, सभी परमात्मा से प्रेम करते हैं, सभी उनका अनुसंधान करते हैं। तो अंतरात्मा, तो ये अंतरात्मा तो मुझसे भिन्न कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ थे कि हमसे मुझसे भिन्न वो प्रत्येगात्मा जो है उससे भिन्न कुछ है नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड भी मुझसे अभिन्न ही है। और ये कहो कि हमारी रचना है तो न तो यह आपकी रचना है न तो मेरी रचना है, मुझ आत्मदेव में यह रचना है नहीं और ना मेरा इसके साथ संबंध है। असंगो ही अयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है। तो अंशांशी भाव होगा परमात्मा का और जीव का, ये जगत का, तो कहा अंशांशी संबंध भी नहीं है। जब इस प्रकार से हम श्रवण करते हैं तो इस दृश्य प्रपंच को लेकर जो राग द्वेष होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। किससे राग करोगे? जब सब तुम्हारी आत्मा है तो किससे द्वेष करोगे? किससे राग करोगे? किससे द्वेष करोगे? माँ से, आनंदमयी माँ से एक बार किसी ने आके पूछा कि माँ, कोई लोग कहते हैं कि महात्माओं के पांव छूकर प्रणाम करना चाहिए और कोई कहते हैं कि महात्माओं के पांव बिना छुए प्रणाम करना चाहिए, दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। कौन सी बात सत्य है? कौन सी बात सत्य है? तो एक कोई विद्वान बैठे थे, माँ ने कहा, पिताजी आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो पिताजी बोले, जो भी पिताजी थे, तो पिताजी ने कहा कि दूर से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जब छूकर, पांवों को छूकर प्रणाम करते हो तो महात्मा की जो तपस्या की शक्ति होती है वह क्षीण हो जाती है, इसलिए दूर से प्रणाम करना चाहिए। तो माँ ने क्या कहा? माँ का सर्वात्म भाव पक्का था, तो बोली कि पिताजी ऐसे में तो एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं छुए, एक पांव दूसरे पांव को नहीं छुए, तो अपना ही तो शरीर है, अपना ही एक देह है, उसमें कौन किसको छूता है, कौन किसको नहीं छूता है। तो ऐसे एक जो जहां सर्वात्म भाव होता है तो वहां पर ऐसी जिस जो अनुभूति की एक प्रगाढ़ता होती है तो वहां आप भेद कैसे बनाएंगे? वह अभेद तत्व, उसकी इतनी बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। आपने सुना होगा कोई महात्मा छूकर प्रणाम नहीं करवाते थे, और गीता प्रेस गोरखपुर में ये नियम था कि कोई किसी को पांव छूकर प्रणाम नहीं करे, लेकिन बाहर से लोग आते तो प्रणाम करते। महाराज जी ने तब सन्यास भी नहीं लिया था, तो महाराज जी दोनों पांव लंबे करके बैठ जाते, लो छुओ, नियम तोड़ दिए, कहते लो छुओ, इनको पांव छूने का जो पुण्य है उससे हम वंचित क्यों करें कि हमारी तपस्या ले जाएंगे, हमारी शक्ति ले जाएंगे। दृष्टि है, देखो इसमें जो नहीं छूने देते उनका कोई, उनकी कोई निंदा की बात नहीं है, पर एक सर्वात्म भाव की दृष्टि की प्रशंसा है। वो सब अपने अपने जगह, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, अपने अपनी ठौर में सब महात्मा बड़े हैं। तो जो देखने वाला है, जो इस संपूर्ण सृष्टि को देखता है, वही कण कण में, कोण कोण में, क्षण क्षण में समाया हुआ है। तो उस यहां कह रहे हैं कि उस देखने वाले को देखो, जो दिखता है उसको मत देखो। तो देखने वाले को देखना यह अंतरात्म दृष्टि है, यह अंतरात्मा की दृष्टि, और इसी को बोलते हैं साधना। देखने वाले को देखो, वह आदेश है, अकाल है, अद्रव्य है, अकार्य है, कार्य कारण उसमें नहीं है, अपूर्वम, अनपरम, ऐसे श्रुतियां उसका निरूपण कर रही हैं। वह आत्मदेव एक रस है, अद्वितीय है। जब एक रस अद्वितीय है तो उसमें द्रव्य कहां से आएगा? कैसे पृथक आकृतियां बनेंगी? महाराज हम तो रोज आकृतियों को देखते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, तो ये जो आकृतियां आप देखते हैं, व्यवहार करते हैं, ये स्फुरण मात्र है, और व्यवहार भी आपका स्फुरण मात्र है। आपने पूरे जीवन एक व्यवहार किया, लेकिन अब क्या है आपके लिए? स्वप्नवत, कुछ भी सत्य नहीं। आप मैट्रिक में पढ़ते थे तो बड़े भयभीत हुए थे कि आज होमवर्क नहीं किया है तो हमें टीचर डांटेगी, लेकिन अब उसकी याद भी नहीं है, उस स्वप्नवत। वो बचपन के दोस्त जिनके साथ हम लोगों ने समय बिताया था, अब उनकी याद भी नहीं, और तब कहते थे अपन गले में हाथ डाल के हमेशा साथ रहेंगे। तो सब छूटता जाता है, क्योंकि वास्तव में आपका किसी से संग है नहीं। ये सब जो कश्चित धीरा से ये बता रहे हैं कि सब जो दृश्य चलता जाता है, देश काल वस्तु व्यक्ति द्रव्य ये सब जो चलते जा रहे हैं, ये स्वप्नवत हैं। सिनेमा की एक रील चल रही है, उनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहते हैं धीरा। कहा महाराज, जब सब कुछ शांति से चलता है तब तो हम प्रभावित नहीं होते, किंतु जब कोई आके हमें गाली देता है तब तो हम प्रभावित होते ही होते हैं। हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था, फौरन आप कर्म के विभाग में पहुंच जाते हैं, पहुंचते कि नहीं। हमने तो उससे अच्छा ही किया था, हमने तो बुरा नहीं किया था। आपको इसमें क्या संतोष नहीं है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया? इतना क्या आपकी तृप्ति के लिए, संतोष के लिए पर्याप्त नहीं है? फिर आप दूसरों से अपेक्षा रखकर अपने को कंगाल क्यों बनाते हैं? अपने में कंगालियत का प्रदर्शन क्यों करते हैं? इसलिए जितना जितना आप विचार करेंगे उतना ही आप निरपेक्ष हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल बात यह है कि आप अपने सौंदर्य को देख नहीं पा रहे। ईश्वर का जो सौंदर्य है, कल शिवरात्रि थी, हम लोगों ने शिव जी की आराधना की, रामनवमी राम की, या रोज जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर का जो सौंदर्य है वह माइक है, माया का है, माइक सौंदर्य है उनका, ईश्वर का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपको प्रश्न बने तो पूछ लेना। तो कहा ईश्वर का जो सौंदर्य है वह माया का सौंदर्य है, किंतु आपका जो सौंदर्य है वह निरपेक्ष सौंदर्य है, उसको देखो, उस अपने सौंदर्य को आप देखिए, और आपकी सत्ता से, आपके ज्ञान से ना, और आपके आनंद से यह संपूर्ण सृष्टि सत्ता प्राप्त कर रही है, ज्ञान चैतन्य प्राप्त कर रही है और आनंद प्राप्त कर रही है। यह आपकी सत्ता, आपका ज्ञान, आपका आनंद, यह आपका सौंदर्य है, और इस सौंदर्य से ईश्वर को भी सुंदरता मिलती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, उपासना में ही कहते हैं, तो आप स्वयं देवता है, आत्मदेव है, और तब वो समष्टि में जो देवता विराजमान है उस शिव को आप पूजते हैं, तो अपना चैतन्य आप उनमें डालते हैं। बोलते हैं मंत्र चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, ईश्वर गुरु आत्मा मंत्र, ये सब में जब चैतन्य आपको दिखने लगता है तो ये चेतित हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, ठगी में नहीं आएगा। कोई बोलते हैं हम मंत्र चेतित कर देते हैं, कोई बोलते हैं हम कुंडलिनी जगा देते हैं, तीन नहीं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो एकाग्र होकर, अंतर्मुख होकर, आवृत चक्षु परमात्मा का चिंतन करता है वही कुंडलिनी की जागृति है। राग द्वेष रहित होकर आप ईश्वर का, सत्य का चिंतन करें वही कुंडलिनी की जागृति। तो कश्चित के द्वारा यह बताया कि बुद्धि ने राग द्वेष के संस्कारों को छोड़ दिया है, और जब राग द्वेष के संस्कारों को छोड़कर वह खोज करती है तब खोज ठीक होती है, तब वो उसका ढूंढना ठीक होता है, नहीं तो हाँ बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, मैं बौरी मैं पगली बुद्धि, वो ढूंढने गई तो अंदर डुबकी ही नहीं लगाई, किनारे बैठ कर रही, क्योंकि इधर राग द्वेष ने आपकी टांग जो बांध रखी है, तो जो राग द्वेष के कारण टांगे बंधी हुई हैं, तो आप डूबना नहीं चाहते, तो रही किनारे बैठ, तो कहां से अनुसंधान होगा, खोज कहां से होगी? जब तक राग द्वेष बने हुए हैं आप जगत को मिथ्या नहीं कर सकते, वह आपको खींचकर अपनी ओर ले जाएगा। तो इसलिए कहा कि कश्चित धीरा और कश्चित कश्चित में ही वह राग द्वेष को छोड़ दिया है उसने। अब एक बात और बताएं आपको, तो क्या बात है कि इतना ही नहीं पाप पुण्य को भी छोड़ दिया। कहा हम बहुत पुण्यों को लेकर जाएंगे, तो कहा कि पाप पुण्य को भी छोड़ दिया। आप पूछेंगे उपासना का निषेध क्यों होता है, तो उपासना का निषेध इसलिए होता है कि आप जो एक एक रूप को लेकर दूसरे से झगड़ा न करें। यदि आप ये जान जाएंगे जो शंकर में है वही राम में है, वही कृष्ण में है, वही दुर्गा में है, वही तत्व है, तो कोई झगड़ा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, भगवान और भगवान में झगड़ा नहीं। तो उपासना पद्धतियों को लेकर लड़ते रहो, ये तो मनुष्य के मन की विविधता है। इस कारण से अनेक प्रकार की उपासना दी गई है, एक ही मंत्र, एक ही उपासना, एक ही ईश्वर, एक ही नाम, एक ही रूप। तो क्या बोलते हैं महाराज जी, हमारे कहते थे वो कंगाल होते हैं, हमारे यहाँ कंगालियत नहीं होती है। हमारे यहाँ ये इतनी बड़ी संस्कृति और इतनी कहीं भी कंगालियत नहीं, और इसके कारण सहिष्णुता पराकाष्ठा में रहती, बहुत सहता है इस देश का व्यक्ति, माने आपका सनातन वैदिक धर्मी जो है यह बहुत सह लेता है, क्योंकि उसको सहिष्णुता उसको घुट्टी में पहले ही पिला दी गई। राम तो का ये भी भगवान है, कृष्ण तो ये भी भगवान है, और जो झगड़ा भी होता है वो नोकझोंक होती है प्यार की, अपनी अपनी निष्ठा की नोकझोंक होती है। तो इसलिए यहाँ कश्चित से के द्वारा मतलब उपासना का भी जो निषेध है उसके पीछे भी एक रहस्य होता है। जैसे सब में जब संपूर्ण देश में भगवान को बताते हैं, कोई कोई पवित्र तीर्थ आदि बताते हैं, तो कोई लोग पूछते हैं कि कोई कहते हैं हरिद्वार बड़ा है, कोई बोलते हैं मथुरा बड़ी, कोई बोलते हैं अब सप्त मोक्षदायिनी पुरिया है, समय हो चुका है, तो सप्त मोक्षदायिनी पुरिया है तो हम किसको बड़ी माने। तो वास्तव में वह काल से देश से अतीत है यह बताने के लिए इतने सारे स्थान पवित्र तीर्थ बता दिए गए, इसका भी रहस्य होता है और चर्चा हम कल करेंगे।